हेलो, नमस्ते सभी को। आज के साइलेंट विजडम के सत्संग में आप सबका बहुत स्वागत है। आपने देखा ही होगा, आज हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये हमारी मांडुक्य उपनिषद रिट्रीट चल रही है और उसमें से कुछ प्रश्न आए हैं। यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद के तो अभी कम हैं प्रश्न, कोई शायद एक दो ही हैं। बाकी तो जो हम तैयारी करते हैं कि कौन है उसका अधिकारी जो उसको समझ सके, जो उसको जीवन में उतार सके, तो उसको लेकर हमने कुछ जो गुण हैं उनकी बात की थी। और उसमें से कुछ गुण हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से शुरू किया है, जो हमने बात की थी, तो उनके बारे में काफ़ी सवाल हैं। और मैं यहीं से शुरू करती हूँ। किसी के और भी इसके बाद प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपको भी इसमें से कुछ भी क्लियर नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है जो मांडुक्य वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हैं यहाँ पर, तो फिर से आप आगे और प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि जब हम सेशन करेंगे तब शायद इतना समय नहीं मिलेगा इतना डिटेल में जाने के लिए। तो पहले प्रश्न से शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर जो कंट्रोल की बात है, तो हमने एक जो बात की थी कि हमारा जो दुख होता है वो इसलिए भी होता है कि हम या तो दूसरों से कंपेयर करते हैं, कंपीट करते हैं, या उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और या कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन सीज जो हैं, हमें इन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो था कि जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो क्या वो खाने पे कंट्रोल की भी बात है कि हमें नहीं करना है। देखो, जब हम यहाँ पर गुणों की बात कर रहे हैं और आपको बोला गया है कि डोंट्स मेक कंट्रोल, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको देखना है कहाँ पर आप जब परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो आप देखो कि उसका कारण क्या है। और बहुत बार कारण क्या होता है कि हम वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे हाथ में होता ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। पता नहीं क्यों हम सबको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, हम हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। तो ये जो है ये हमारे लिए अवगुण बन जाता है। किस चीज़ के लिए अवगुण बन जाता है? साधना के रास्ते पे, हमारे सत्य को जानने के रास्ते पे, कि हम जो चाहते हैं वैसा हो। तो इसलिए जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग फूड, अगर आप अपनी सेहत के लिए कुछ खाना को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। फिर कंट्रोल, देखो कोई भी जो चीज़ होती है अपने आप में पूरी तरह से बुरी या पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सिचुएशन क्या है। अगर हम अपने खाने को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कभी कभी हम खुद को भी कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तो वो मुझे ही देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में हो सकता है वो अच्छी बात भी हो, अगर वो कंट्रोल मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ तो। यहाँ पर जो आपको बताया गया है कंट्रोल, उसका मतलब ये है गहरे में कि वो कंट्रोल जो मैं दूसरों पर या ज़िंदगी पर या परिस्थितियों पर मैं लगाना चाह रही हूँ, जो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। लिटरली हम बहुत एनर्जी और अटेंशन वेस्ट करते हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें खुद ही अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि कहाँ मुझे क्या कंट्रोल करना है और क्या नहीं करना है। ये देखो, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं ये आपके मार्गदर्शन के लिए हैं, आपको समझाने के लिए, लेकिन इनको ऐसे पत्थर की लकीर भी नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये बतानी इसलिए भी पड़ती हैं कि अगर बोल दिया जाए कि हाँ सब ठीक है, तो उसको भी गलत तरीके से ले लिया जा सकता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये कंट्रोल कर रही हूँ, अंदर से तो दुख दे रहा है, लेकिन फिर हम मन में समझा लेंगे कि नहीं नहीं ये कंट्रोल तो अच्छा है। तो ये जो हमारा मन है ना, ये किसी भी चीज़ को कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है। तो वो हमें, हम साधक हैं सब, इतनी बुद्धि तो हम लगा ही सकते हैं, और समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो कंट्रोल क्या मेरे लिए एक दुख का कारण बन रहा है या नहीं बन रहा, वो आप खुद देख पाएंगे। और फिर भी अगर आपको किसी स्थिति में ऐसा लगे कि नहीं मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सही है या गलत है, तो हम ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। फिर आपको वो सिचुएशन शेयर करनी पड़ेगी, आप सिचुएशन शेयर करिए, और इवन ग्रुप में हम लोग जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं वहाँ पे भी आप अपना शेयर कर सकते हैं और दूसरों से एक दूसरों का भी राय आप ले सकते हैं उसमें। इसको कंट्रोल को लेके शायद एक और क्वेश्चन भी है, मैं वो भी पहले ले लेती हूँ। हाँ, 11th क्वेश्चन जो है कि कंट्रोल डज इट अप्लाई टू हाउ वी कंट्रोल आवर चिल्ड्रेन एंड वांट देम टू डू थिंग्स द वे वी वांट। ये बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने पहले का जवाब दिया। देखो, ये हमें हर सिचुएशन में देखना पड़ेगा। हाँ, एक उम्र तक ज़रूर बच्चों को कंट्रोल भी करना होता है, वो ज़रूरी भी होता है, कुछ कंट्रोल ज़रूरी होते हैं। तो हमें ही जानना है, समझना है कि क्या वो कंट्रोल की ज़रूरत है कि नहीं है। और आपको ये भी देखना है कि अगर चलो ज़रूरत भी है, यहाँ पर मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को कंट्रोल करूँ, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो मेरी सुनता ही नहीं है। अगर वो सुन ही नहीं रहा, मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है और मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे भी गड़बड़ हो। तो ये तो बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। फिर से जो आपको मांडुक्य को समझने के लिए या सत्य को समझने के लिए जो कंट्रोल का बताया गया है, वो आपको देखना है कि क्या ये मेरी कंट्रोल वाली जो इच्छा है या वृत्ति है, कहीं इसी से तो मुझे दुख नहीं मिल रहा, या जो मुझे दुख मिल रहे हैं कहीं वही तो काम नहीं कर रही। ये हमें खुद ही इस चीज़ पे थोड़ा मनन करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं कि क्या रेकी करनी चाहिए। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ने बोला कि क्या अगर एक ईश्वर ने कोई तरीका बनाया है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बीच में रेकी करके अगर किसी को स्वस्थ कर रहे हैं, कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो सही है या गलत है। देखो, मैंने पहले शुरू में जब मैंने सीखी थी, मैंने बहुत रेकी की है, उसके बाद मैंने बीच में बिल्कुल बंद कर दी थी, फिर थोड़ी बहुत की है, और मैं आपको अब प्रेजेंट का बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ। आज मुझे लगता है जब तक आप रेकी ये समझ के करते हैं कि आप करने वाले हैं ही नहीं, पूरी तरह से अगर आपका कर्ता भाव समाप्त हो जाए और फिर आप रेकी करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक और बात बताऊं, जब आपका कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा ना, तो आपको रेकी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो भी होना है आपके थ्रू, वो वैसे भी हो जाएगा। जब हम ये सवाल भी आता है कि मैं हम रेकी करें या नहीं करें, देखो ये सवाल कहाँ से आ रहा है कि कहीं मैं दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं अपने लिए तो कोई बंधन नहीं बना रहा हूँ रेकी करके। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये अगर मुझे जहाँ पर भी बंधन, कहाँ बनता है बंधन, बनता है कर्ता भाव से कि मैं करने वाला हूँ, मेरे थ्रू ये हुआ। और हमें कई बार हमें लगता है कि हाँ, हम किसी की मदद कर दें तो हमें सेटिस्फैक्शन अपनी खुशी के लिए कि देखो मैंने किसी की मदद कर दी, या उससे मुझे ये आश्वासन मिलता है कि मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है कि मैंने किसी के लिए रेकी की और वो स्वस्थ हो गया या उसकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो जहाँ पर अगर इन चीज़ों को लेके अहंकार आ जाए, तो बिल्कुल वहाँ पर बंधन बनेगा। दूसरे का तो मालूम नहीं इंटरफेयर किया है या नहीं किया, लेकिन अपने लिए ज़रूर बंधन बन जाता है। और वही बंधन है कि मैंने किया उस चीज़ का। मेरी जो सजेशन रहेगी, जो लोग भी रेकी कर रहे हैं या सीख रहे हैं, अपने लिए करो, सबसे अच्छा होता है। और इनफैक्ट उसका पर्पस भी ये है कि आप खुद को स्वस्थ कर सको, खुद को हील कर सको। कोई भी चीज़ सबसे इसलिए सीखो कि आप खुद को कर सको। और क्या है, देखो रेकी वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट हीलिंग सिस्टम है। अगर किसी को आपकी रेकी की ज़रूरत है, फिर से वही बोलूँगी, उसको अपने आप मिल जाएगी, उसके लिए अपने आप आपके थ्रू हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि उसका ये हो जाए। ये मेरा विचार है, आई एम श्योर इसके अलग अलग विचार हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे विचार भी बदले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर भी अगर आपका कोई इस चीज़ से लेके कोई और पर्सपेक्टिव हो या कोई और राय हो तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर से अपने लिए कीजिए, और जब किसी और के लिए भी करें तो कर्ता भाव बिल्कुल मत रखें वहाँ पर कि मैं करने वाला हूँ, और ना ये इच्छा रखें कि जो मैं दूसरे के लिए चाहती हूँ वो हो जाए। वो आपके लिए है ही नहीं, आपका काम नहीं है कि उसको स्वस्थ होना है या क्या होना है, जो भी उसकी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाए या उसको जॉब लग जाए या उसका प्रमोशन हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो मांगते हैं अमरीकी, तो वो हमें उन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा सवाल था, मेंटल पेन एंड नॉर्मल पेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट। असल में ये हमने बात की थी पेन और सफरिंग में जो डिफरेंस है, बहुत बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि पेन अलग होता है और सफरिंग अलग होती है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा कि नहीं भूल पाते मेंटल पेन जो है, तो फिर वो सफरिंग हो गया है। अगर आप भूल नहीं पा रहे हो तो सफरिंग है, क्योंकि पेन जो है वो कैसी होती है, वो नेचुरल होती है। जैसे थोड़ी देर आपका कुछ कट हो गया, थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, हमेशा थोड़ी रहेगा। अनलेस कि जहाँ पे आपको घाव लगा है, चोट लगी है, आप उसको पट्टी करने की बजाय उसको बार बार छूते रहें, बार बार छुएंगे तो वो कभी भरेगा, कभी नहीं भरेगा आपका घाव, अगर आप उसको बार बार टच करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। और हम यही करते हैं, आप देखो मेंटल पेन में हम यही करते हैं कि हमारे साथ कुछ हो गया, जो चीज़ मुझे बुरी लग गई उसको हम छोड़ते नहीं हैं, हम बार बार अपने दिमाग में उसको घुमाते रहते हैं, 10 लोगों से बात करते रहते हैं उसके बारे में, यही कारण है कि वो छूटता नहीं है। तो हम यही कर रहे हैं ना, जहाँ पे हमें चोट लगी है उस पर बार बार टच करे जा रहे हैं, इसलिए वो, और वही सफरिंग है। पेन का क्या मतलब है कि हाँ, जो कटा और फिर जितना समय लगेगा वो हील हो जाएगा, चाहे वो फिज़िकल पेन हो चाहे वो मेंटल पेन हो। मेंटल पेन होता है, मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि माइंड भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे बॉडी एक स्ट्रक्चर है। उसको चोट लगी मतलब वो किसी चीज़ से टकरा गई, चाकू से टकरा गई, ज़मीन से टकरा गई, किसी चीज़ से टकरा गई नुकैली, जिससे उसको चोट लगी, दर्द होगा, खून बहेगा। ऐसे ही हमारा जो माइंड है वो भी एक स्ट्रक्चर है, हाँ वो बहुत बदलता रहता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है, लेकिन है तो स्ट्रक्चर ना। हर समय हमारे कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से ही हम उनका उपयोग करते हैं और चलते हैं, और वो कहीं ना कहीं धक्का खाएंगे ही खाएंगे। हमारे घर में ही जितने मेंबर्स होते हैं जिनसे हमें बहुत प्रेम होता है, उनके साथ भी हमारी ये चलती रहती है, कहीं ना कहीं हमारे विचार टकराते रहते हैं, तो वो थोड़ी देर को परेशानी होती है कि अरे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि कौन सही है या गलत है, बात ये है कि आपका एक स्ट्रक्चर है, दूसरे पर्सन का भी एक मेंटल स्ट्रक्चर है, वो जब दोनों एक दूसरे से कभी ना कभी तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, और चोट लगेगी लगेगी, लेकिन अगर हम उसमें घुस जाएंगे कि ये क्यों हुआ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा होता है, फिर वो सफरिंग हो जाएगी। पेन से बहुत आराम से डील किया जा सकता है, और सफरिंग जो है वो मेंटल डिजीज़ है, वो हमारा खुद का क्रिएशन है। पेन नेचुरल है और सफरिंग हमारी क्रिएटेड है, इट्स अ ह्यूमन क्रिएटेड थिंग। और अध्यात्म में आपकी सफरिंग पूरी तरह से समाप्त हो सकती है, पेन नहीं हो सकता समाप्त, क्योंकि पेन नेचर का दिया हुआ है। चौथा सवाल, What is the difference between criticize, complain and being judgmental? More or less the same things. अगर हम इनकी डेप्थ में जाएंगे, अगर हम गूगल को भी बोलेंगे या आजकल चैट GPT को बोलते हैं, वो हमें बहुत सारे अलग अलग इनके मीनिंग दे देगा, लेकिन हाँ मोर और लेस एक ही बात है, इट इज़ अबाउट बींग जजमेंटल ओनली। हम जजमेंटल ही तो होते हैं ना दूसरों को करके, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जजमेंटल का क्या मतलब है, हम यही तो पास कर रहे हैं, चाहे हम पॉजिटिव जजमेंट पास कर रहे हैं या नेगेटिव जजमेंट पास कर रहे हैं। पॉजिटिव जजमेंट में बोल रहे हैं हम ये बहुत अच्छा है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि कुछ है जो हमें बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अब फिर से जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या 100% क्रिटिसिज्म और 100% कंप्लेन और 100% जजमेंटल होना ख़राब होता है? नहीं, द आंसर इज़ नो। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो और वो आप ही को पता है अंदर से, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को ये प्रूव करने के लिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि एक्चुअली जब आपको लगता है कि दूसरा गलती कर रहा है या दूसरा जो समझ रहा है उसके फ़ायदे के लिए, उसके भले के लिए। वो अब मैं एक बात बताऊँ, मैं जैसे ही ये बात बोल रही हूँ मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या होगा, कितनी चीज़ों में हम दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी कर लेंगे और सोच लेंगे नहीं नहीं मैं तो उसके भले के लिए क्रिटिसाइज़ कर रही थी। क्योंकि वो भी बुद्धि होनी बड़ी ज़रूरी है कि हम किस उसमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक बहुत छोटा सा वो देती हूँ, थंब रूल जो हम बोलते हैं, कि कहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे सामने से आके पूछे कि मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ, या मुझे इस पर फीडबैक दीजिए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके जो भी लोग हों, कोई पूछे तो उनको, और वो भी बहुत प्रेम से समझ के, कि अगर आपको लगता है, और हमेशा जब भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं आप बोलो ये मेरे को, मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं है ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म भी आपका ओपिनियन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इससे क्या होगा, आपको अननेसेसरी दूसरों को जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम जज करते हैं उतना हम उसी भंवर में फंसते हैं, फिर से हम बंधन में फंसते हैं। जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको शायद उसका थोड़ा सा असर आता हो आपके क्रिटिसिज्म का, लेकिन आपके ऊपर, यहाँ पर बात आपकी हो रही है, बात साधक की हो रही है, जो साधक का माइंड है वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं ऊपर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। और ये जो है ना कि मुझे पता है, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। पूजा सेइंग आई जज अ लॉट इन माय माइंड नॉट आउट लाउड, हाउ टू स्टॉप। राइट, सो टू थिंग्स यू कैन डू। We all judge. I'm not saying that we don't judge and we can stop judging. No, we cannot. So when you are judging, just watch yourself and check. वहीं पे अपने आप को check करो। क्या ये judgment देने की ज़रूरत थी? क्या मेरे mind को यहाँ पर judgment करने की ज़रूरत थी? और अगर वो judgment कर रहा है, ये पहली बात थी कि क्या ज़रूरत थी। दूसरी चीज़, अगर ये जज कर रहा है तो ये क्यों आ रही है चीज़, मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंस है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ मैं जाती हूँ और कोई मुझे कुछ खाने को देता है और मैं खाती हूँ और मुझे वो खाना अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, ओके, अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ पर जज करूँगी, अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं बना और मेरे माइंड में ये जजमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि खाना कैसा टेस्ट करता है मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है पर इसको समझो। अगर मेरे लिए सपोज़ टेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मेरे माइंड में जजमेंट नहीं आएगा। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप कहीं पर गए हो, एक लेटेस्ट से किसी पार्टी में गए हो, आप किसी का ड्रेस देखते हो, किसी ने कुछ पहना हुआ है, क्योंकि मुझे पता है नॉर्थ में तो, आई डोंट नो अबाउट यू बट नॉर्थ में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, कि आपने किसी का ड्रेस देखा और आप सोच रहे हो अरे ये कैसा पहना हुआ है उसने, या इसने तो ये बहुत अच्छा पहना हुआ है। चाहे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको उसका बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको एडमायर कर रहे हो, या फिर आप उसके अपने माइंड में ये कर रहे हो उसने अच्छा नहीं पहना है। अब ये जो माइंड में जजमेंट आया है, इसका क्या मतलब है कि मेरे लिए कहीं ना कहीं आप कैसा ड्रेसअप करते हो ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमारा माइंड किसी चीज़ को जज करता है, इसका मतलब है कि मेरे लिए, मेरे माइंड के लिए मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी हुई है। क्योंकि अगर इम्पोर्टेंस नहीं दी तो मैं क्यों जज करूँगी, क्या ज़रूरत है। तो चेक करो अपने को कि क्या ये जजमेंट्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। और देखो 100% हम कभी भी नॉन जजमेंटल नहीं हो सकते, बस हम उन्हीं चीज़ों में जज करते हैं जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। किसको इम्पॉर्टेंट है? मेरे माइंड को इम्पॉर्टेंट। और हाँ, उसके बाद हमें थोड़ा अगर बुद्धि से बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है, आप जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों की आप इम्पॉर्टेंस हटा दोगे वहाँ पे आपका जजमेंट बहुत कम हो जाएगा और समाप्त होता चला जाएगा। ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना इफ़ इट वर्क्ड। आई टेक द सिक्स्थ क्वेश्चन। वॉट इफ वी आर एट द रिसीवर एंड ऑफ बींग कंपेयर्ड, कंट्रोल्ड और क्रिटिसाइज्ड। तो ये क्या हुआ था, हमने बात की थी कि हमें दूसरों को कंपेयर नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना। मुझे देखना है कि मैं दूसरों के लिए ना करूं। तो क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है, और ये शायद दो लोगों का सवाल था कि अगर मुझे ही कंपेयर किया जा रहा है, मुझे ही कंट्रोल किया जा रहा है और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तब क्या करूँ। देखो बिल्कुल यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है, देखो इस क्वेश्चन को समझो। जो दूसरा कर रहा है, आपको जो ये किया जा रहा है, आप उसको कंट्रोल या तो कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे भी कंट्रोल आएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि आई एम एट द रिसीवर एंड, दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, इट इज़ बियॉन्ड। क्योंकि हम दूसरे को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मुझे कंपेयर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूं। आई नो वो बहुत आसान नहीं है, लेकिन अब आपने पूछा है तो बिल्कुल मैं आपको आध्यात्मिक ही इसका आंसर दूंगी, जो स्पिरिचुअल आंसर है। अगर मैं कुछ नहीं कर सकती हूं तो या तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूं, और मुझे नहीं करना है, इवन इफ आई एम बीइंग कंपेयर्ड, कंट्रोल्ड और क्रिटिसाइज्ड, द क्वेश्चन हेयर इज़ एम आई डूइंग इट एज़ वेल When the other person is doing it, that is not in my control. जो दूसरा मुझे कर रहा है वो मेरे control में नहीं है। मेरे control में क्या है यहाँ पे? कि मैं ये चीज़ ना करूँ। सबसे पहले खुद को देखना है कि मैं ना करूँ। दूसरी चीज़, हम अध्यात्म में हमेशा ये भी बोलते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या कहीं कोई डिपेंडेंसी है आपकी दूसरे पर? क्योंकि कई बार हम ये सब चीज़ें डिपेंडेंसी में भी अलाउ करते हैं कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, तो अब वो जो भी करेंगे हमें करना पड़ेगा। इसीलिए हम अध्यात्म में बार बार इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो फिर हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि क्या कुछ बहुत ज़्यादा इस तरह का रिलेशनशिप है कि हम उनसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उनसे कम से कम मिल सकते हैं। बिकॉज आई अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो, ऐसा बहुत होता है। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम अध्यात्म में क्या बोलते हैं, एक जो शब्द है जो हमारा आएगा जब हम करेंगे साधना चतुष्टाय, उसमें आता है, वो होता है तितीक्षा। तितीक्षा जो है एक गुण है। तितीक्षा का मतलब होता है फॉरबेयरेंस। तितीक्षा का मतलब है कि जो चीज़ मैं नहीं बदल सकती, जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसको स्वीकार करूँ। अगर आप कुछ कर सकते हो आप ज़रूर करो, जितना हो सकता है कर लो, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर आपके हाथ में नहीं है, तो आप उस चीज़ को बैर करो। लेकिन बैर दुखी होके मत करो। यहाँ पे जब तितीक्षा बोला जाता है तो ये नहीं बोला जाता कि आप बस अंदर से भरे हुए हैं, ज़बरदस्ती है, और बाहर से उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है क्योंकि मेरे हाथ में है नहीं। जब आपको पता लग गया आपके हाथ में नहीं है, तो उसको स्वीकार भाव से कि हाँ ठीक है, ऐसा ही है, हैविंग पेशेंस अबाउट इट, इट्स ओके, कोई और कर रहा है, मुझे नहीं करना है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल तो है, अब यही तो बात है। फिर अगर हमें इस रास्ते पर चलना है, अगर हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, तो फिर ये मुश्किलें तो आएंगी। वो हमें करना पड़ेगा। इसको भी साधना बना लीजिए, अपनी साधना का हिस्सा बना लीजिए। फिर से बोलूँगी, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बैर करो, हो सकता है आप इसमें बदल सकते हो, आप ऐसे लोगों से हट सकते हो दूर, हट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि आप साधना कर रहे हो तो आप दूसरों की गलतियों को या दूसरों के व्यवहार को आप सहें, आप हट जाएं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप नहीं हट सकते तो आप उसको स्वीकार करें और सहज भाव से, प्रेम भाव से। मुमुक्षु का यहाँ पे प्रश्न है, देर इज़ अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस इन साक्षी भाव, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। देखिए, ये डिपेंड करेगा आपका कि आप इंडिफरेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। क्या आप डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, या ऐसा है कि एक इंडिफरेंस होता है, कैसे बताऊँ, थोड़ा सा एक फ़र्क होता है। एक इंडिफरेंस है कि मुझे अब तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, और एक इंडिफरेंस है कि हाँ ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, जब हम उदासीनता की बात करते हैं, एक उदासीनता नेचुरल तरीके से आती है, फोर्स्ड नहीं हमारे ऊपर की जाती, और एक है जो हम कह रहे हैं मुझे आई डोंट केयर अबाउट यू। सो साक्षी भाव में जो उदासीनता होती है, जो डिटैचमेंट होता है या साक्षी भाव होता है, उसमें केयरिंग एस्पेक्ट नहीं चला जाता। अब क्या है, देखो प्रॉब्लम, दिक्कत मुझे कहाँ आ रही है इसका जवाब देने में, शायद आप समझ पाएंगे, क्योंकि शब्दों में हम जब उलझ जाते हैं ना, तो और उन शब्दों को हम क्या मीनिंग देते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम क्या, आपने लिखा है फ़र्क ना पड़ना, हाँ ठीक है, तो अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसमें एक और चीज़ देखनी है, फ़र्क नहीं पड़ना कि जब दूसरा मुझे कुछ कर रहा है, देखो एक फ़र्क है कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और एक है कि अगर दूसरा भी मेरे प्रति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, मुझे, मैं उसमें भी उदासीन हूँ, इंडिफरेंट हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और मैं उसके लिए नेगेटिव भी नहीं हूँ। क्या आप ये देख पाते हैं कि अगर मुझे कोई बहुत जज कर रहा है या क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो मैं डिटैच्ड हूँ, लेकिन मेरा उसके लिए कोई, मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं इसको बताऊँगा कि अब इसने मेरे साथ ऐसा किया, या मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे बदला लूँगा, वो चीज़ नहीं होगी। इट इज़ लाइक, हाँ ठीक है, अभी किया तो किया, वो उसका है, मेरा अलग है। अगर वो डिटैचमेंट है, वो इंडिफरेंस है, तो ठीक है, बिल्कुल ओके, यू डोंट फील इल और वेंजफुल फीलिंग, देन इट्स परफेक्टली फाइन, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली, दैट डिटैचमेंट इज़ फाइन। अच्छा, मैंने शायद फिफ्थ क्वेश्चन मिस कर दिया। व्हेन अदर्स क्रिटिसाइज इट डजंट गो वेरी इजी फ्रॉम हेड, डज क्रिटिसिज्म लीड यू टू कंट्रोल? यस यस, सो वही बात है कि जब हमें किसी ने क्रिटिसाइज किया तो क्या हुआ, सफरिंग हो गई वो हमारे लिए, ठीक है, मेंटल पेन। देखो, हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, किसी को भी क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, नोबडी लाइक्स क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म का मतलब है कि कोई दूसरा बोल रहा है कि आप जैसा सोचते हो, या आप जो कर रहे हो, या आप जैसा समझ रहे हो, वो सही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके स्ट्रक्चर को एक चोट दी गई है। क्रिटिसिज्म का मतलब है आपका जो थॉट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कहीं कुछ उस पर चोट लगी है, तो दर्द होगा हर किसी को। किसी को भी क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता। अब बात क्या है कि मैंने जब वो क्रिटिसिज्म लिया, अगर मैं इस उस पर भी हूँ, तो मैंने कैसे लिया, मैंने लिया कि शायद इसमें मेरा भला है, मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, या मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है दूसरे ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है या मेरे भले के लिए भी किया हो, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है या सही करना है, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, अगर वो क्रिटिसिज्म मेरे दिमाग में घूमता रहता है, चलता रहता है और मेरे अंदर बुरी भावना आती है उसके प्रति, जैसे उन्होंने बोला कि वो दिमाग से जाता ही नहीं है, तो फिर से वो सफरिंग हो गई। और हाँ, जब हम अगर वो सफरिंग बनेगी तो हम डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे, हम कंट्रोल करना चाहेंगे उसको जिसने हमें क्रिटिसाइज़ किया, या हम ऐसी सिचुएशन कंट्रोल करना चाहेंगे कि मुझे वो दोबारा उसका क्रिटिसिज्म ना मिले, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं एक 9th 10th क्वेश्चन भी ले लेती हूँ, ये इसी से रिलेटेड हैं। इस दुनिया में क्या कोई ऐसा है जो क्रिटिसिज्म कंपेयर एंड कंट्रोल से परे हो? नहीं, कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि इनका मतलब ये नहीं है कि 100% ये आपके हट जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़रूरी भी होते हैं किसी सिचुएशन में, क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, कंपैरिजन भी ज़रूरी है और कंट्रोल भी ज़रूरी है, पर हमें पता होना चाहिए कितनी मात्रा में, कितना। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, एक उसमें नमक की एक मात्रा होती है। सपोज़ आपके घर में कोई सब्जी बना रहा है जो हर बार बहुत ज़्यादा नमक डाल देता है, दो जनों की सब्जी में वो 4 चम्मच नमक डालता है, तो अब क्या होने वाला है? आपको हमेशा सब्जी कड़वी लगने वाली है ना? अब आपने कड़वी सब्जी खाई तो आपको लगेगा बस नमक तो डलना ही नहीं चाहिए। एक बार ऐसा लगेगा ना, क्योंकि जब हम कड़वा हो जाता है मुँह, तो ऐसा लगता है कि नमक तो खाना ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अगर सही मात्रा में हो तो नमक बिल्कुल सही है, वो ज़रूरी है। तो हर चीज़, इनफैक्ट जिनको हम नेगेटिव इमोशंस भी बोलते हैं, वो भी सही मात्रा में सही होते हैं, ज़रूरी होते हैं। हमारा एंगर भी ज़रूरी है, हमारा फियर भी ज़रूरी है, ये सब इमोशंस हमारे, ये ज़रूरी होते हैं। तो और कभी कभी आपसे एज अ ह्यूमन बीइंग, फिर से वो माइंड है, आप वहाँ पर भी क्रिटिसाइज़, कंपेयर या कंट्रोल करोगे जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए था, थोड़ा बहुत होगा। फिर से जैसे वो बोलते हैं ना कि आपको इतना एरर अलाउड होता है, थोड़ा एरर अलाउड होता है, तो यहाँ पे हर कोई करेगा, एरर थोड़ा सा होगा। आप ये मत सोचो कि आप बिल्कुल कोई है जो दूध का धुला एकदम वाइट है और आप भी हो जाओगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट ही मत करो, ऐसी आइडियलिस्टिक चीज़ें। लेकिन हाँ, ज़रूर इनको, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लोगों में, सब में ज़्यादा होते हैं, तो हमें उन्हें कम करना है। इसलिए ही आपको बताए गए हैं कि आप इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप कितना करते हैं। अगर आप देखो, मैंने आपको एक्सरसाइज क्या दी है, होमवर्क क्या मिला है, कि आप चेक करो इस पूरा एक हफ्ता कि मैं कितनी बार मेरे मन में क्रिटिसिज्म, कंपेयर और कंट्रोल आता है। आप उसका लिस्ट बनाइए, फिर आपको आइडिया होगा, फिर आपको पता लगेगा आप कितना नमक डाल रहे हो सब्जी में। Then there was a question, does evaluation too falls under category of comparison to be avoided? अब हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक evaluation से मतलब यहाँ पर ये होगा, आई विल टेक इट एज अ टेक्निकल थिंग, कि अब जैसे टीचर है, टीचर का काम है स्टूडेंट की, उसको इवेलुएट करना। अगर आपका वो प्रोफेशन है तो आपको वो इवेलुएट करना है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव, आपको काम दिया गया है, दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। अब मैं ही एक असेसर हूँ इन द कॉर्पोरेट्स, आई डू असेसमेंट्स, उसमें मुझे लोगों को जज करना ही करना है, मेरा काम ही है जज करना, मेरा काम है उनको असेस करना, मेरा काम है उनको पॉइंट्स देना, रिपोर्ट देना, पॉजिटिव बताना, नेगेटिव बताना, तो वो इवेल्यूएशन है, तो वो तो जॉब है, वो तो करना ही है, उसमें ये नहीं आता। लेकिन उसके बड़े क्लियर रूल्स होते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव होता है कि किस बेसिस पे, वो स्केल क्या है बताना कि किस बेसिस पे ये इवेल्यूएशन किया जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है कि आपका ये कम है कि ज़्यादा है, तो वो एक टेक्निकल चीज़ हो जाती है, वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अब फिर से इन्होंने आगे पूछा है, कैन क्रिटिसाइजिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड? अब देखो, बेटरमेंट ऑफ अदर्स क्रिटिसिज्म, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। क्योंकि मेरे मन को बिल्कुल लग सकता है कि मैं दूसरे का भला चाहती हूँ इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। हम सबको पता है ऐसे भरे पड़े हैं लोग, अरे हम तुम्हारे भले के लिए तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ताकि तुम बेटर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमें खुद को ही पता होना चाहिए। आई वुड से मत करो, दूसरे के भले के लिए भी मत करो। मैंने क्या चीज़ बताई, अगर कोई दूसरा आपको सामने से पूछे कि मुझे इसमें बताओ तभी बताओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप से जाके बता रहे हैं तो यही समझो कि आप क्रिटिसिज्म के नेगेटिव स्केल में फॉल कर रहे हैं। ओके, मैं सातवां प्रश्न ले लेती हूँ। मन का गुण है विभाजित करना, इज इट थ्रू द सेंसेस, कैन यू एक्सप्लेन दिस इन डेप्थ। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हमारा आया था वही जो हम मांडुक्य की चर्चा कर रहे थे कि हमें है तो सब एक लेकिन सब कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न हमें नज़र आता है। हर चीज़ अगर हम अभी अपनी आँखें दौड़ाएँ आसपास तो हमें सब कुछ अलग नज़र आ रहा है, दीवार, लैपटॉप, फ़ोन पड़ा है, लैंप पड़ा है, चार्जर पड़ा है, बुक्स पड़ी हैं, सब अलग 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 चीज़ें और हमें लगता है सब अलग हैं। अब अगर हम अपने हाथ को देखें तो हमें पांचों उंगलियां सब अलग 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 ही नज़र आ रही हैं, वो जुड़ी हुई हैं, एक ही हाथ है लेकिन नज़र तो सब अलग ही आ रही है ना। और ये ज़रूरी है, ये उपयोगी है इस अनुभव को लेने के लिए, ये ज़रूरी है। तो जो मन जो विभाजित करता है वो क्या सेंसेस के थ्रू करता है? हाँ बिल्कुल, इंद्रियों के थ्रू। जो हमारी पांच इंद्रियां हमें मिली हैं, हमें ये शरीर मिला है, ये ऐसा है हम बोल सकते हैं कि जो मैं हूँ मेरे ऊपर इस मन और शरीर का एक आवरण है, एक उसके ऊपर एक फिल्टर लगा दिया गया है जिस फिल्टर के थ्रू मैं इस संसार का अनुभव कर पा रही हूँ। और वो संसार का अनुभव करने का मतलब ही ये है कि वो एक ही चीज़ अलग अलग नज़र आए। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप एक नल से पानी आ रहा है, एक ही धारा, एक मोटी धारा नल की बह रही है और फिर आप उसके ऊपर एक छोटी सी छलनी लगा दीजिए, छोटी सी, तो अब क्या होगा, वही एक ही धारा 15 अलग अलग धारा में आने लगेगी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हम हर बार ये देखते हैं अपने घरों में नलकों में देखते हैं कि वो एक ही पानी की धारा एक छलनी लगाने की वजह से उसकी अलग अलग हो गई। बिल्कुल वही हमारे साथ हो रहा है यहाँ पर। जो मैं हूँ, जो आप हो, जितने भी हैं, हम सब हैं एक ही, लेकिन सबके ऊपर वो एक फ़िल्टर लगा हुआ है। वो फ़िल्टर क्या है? वो फ़िल्टर ही हमारा मन है, वो फ़िल्टर ही हमारा शरीर है। और वो फ़िल्टर क्यों लगाया है? अनुभव के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। वो जो एक है, वो जो परब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, वो स्वयं को ही अलग अलग अनुभवों से जानने के लिए कर रहा है, खेल खेल रहा है। तो इसीलिए जैसे छलनी का गुण है कि वो उस पानी को अलग अलग पानी की धाराओं में विभाजित कर देगी, बिल्कुल ऐसे ही जो मन है उसका गुण है कि वो क्या कर रहा है, हमारी इन इंद्रियों के द्वारा हमें अलग अलग चीज़ों को सबको विभाजित करते हुए दिखा रहा है। जिसे मैंने बताया था कि ये जो हमारी दो आँखें हैं, जब भी हम कुछ भी इन दो आँखों से देख रहे हैं तो सब अलग नज़र आएगा, क्योंकि यही इन आँखों का गुण है कि वो सब कुछ विभाजित हमें नज़र आएगा। और वही अगर हम साधना करते हैं तो हम जो तीसरी आँख के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा बोला जाता है आज्ञा चक्र के बारे में, इसीलिए कि वो अगर वहाँ से जब देखा जाता है, जब एक आँख हो जाती है, आई थिंक बाइबल में भी कहीं पे है, व्हेन thy eye becomes one, somewhere it is mentioned there as well, when thy eye becomes one, then you see, you know, then you see कि there is one, मतलब वो छलनी के पीछे चले गए, वो छलनी के पीछे चले जाना है ना, तो एक ही धारा है। आई होप दैट शुड हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट इफ देर इज मोर, इफ इट इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड, आप और भी पूछ सकते हैं। फिर शायद इनका ही आगे सवाल था कि ऑल्सो हाउ द डिविजन टेक्स प्लेस एज पर तन मात्रास। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि तन मात्राएँ क्या होती हैं। तन मात्राएँ हमारी पाँच हैं, जो हमारी इंद्रियों के अनुभव हैं, वो क्या हैं? स्पर्श, गंध, रस, रूप और शब्द। मतलब ये पांच चीज़ें जो हमारी हैं क्या हैं? साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साउंड। ये पांच चीज़ें जो हम पांच इंद्रियों से जान रहे हैं। तो हाँ, वो तन मात्रा से डिवीजन नहीं हो रहा, तन मात्रा उस डिवीजन का अनुभव है, उस डिवीजन की वजह से हमें ये तन मात्राओं का अनुभव हो रहा है, उसके थ्रू ही हम इसको जान रहे हैं। पहले आपने जो बोला था वो सही था, विभाजित कौन कर रहा है? मन कर रहा है, शरीर कर रहा है। और विभाजित करके अनुभव किस चीज़ का हो रहा है? तन मात्राओं का अनुभव हो रहा है। हमें ये पांच इंद्रियां पांच अलग अलग तरह के अनुभव दे रही हैं, और वो अनुभव जो कि जो लास्ट है, मतलब इसको आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं तन्मात्रा। सो द क्वेश्चन हाउ द डिविजन टेक्स प्लेस एज पर तन्मात्रास, नो दैट इज नॉट दैट क्वेश्चन इज नॉट राइट। द डिविजन इज नॉट टेकिंग प्लेस एज पर तन्मात्रास, नो। नीचे कुछ सवाल आए हैं, मैं और देख लेती हूँ। अच्छा, लीना ने पूछा है क्या एक्सेप्ट करने पर भी सफरिंग होगी या वो एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि सफरिंग हो रही है? क्या इंडिफरेंट होना भी एक्सेप्टेंस है? बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। अगर जब तक हम एक्सेप्ट अपने माइंड से लड़ाई करके कर रहे हैं तब तक हाँ सफरिंग होगी, एक्सेप्ट करने में भी सफरिंग होगी, और हाँ वो एक्सेप्टेंस नहीं है। कभी कभी हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, बस वो थोड़ी देर के लिए हम उस चीज़ को दबा देते हैं। और कुछ सिचुएशंस में, लेट मी बी क्लियर, मतलब हम हर चीज़ में बड़े आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते हैं, लाइफ में बहुत बार सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको सप्रेस भी करना पड़ता है, ज़बरदस्ती एक्सेप्टेंस आता नहीं है लेकिन लाना पड़ता है, होता है। और वो कभी ना कभी जो आपने ज़बरदस्ती जिस चीज़ को एक्सेप्ट करी है वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अंदर रहेगी और कभी ना कभी फिर किसी और फॉर्म में बाहर भी आएगी, ये होना ही है। आप उससे भाग नहीं सकते, आप उसको डिले कर सकते हो, आप उससे भाग नहीं सकते। इसीलिए क्यों हम बार बार फिर सब बोलेंगे वहीं की सुई, क्यों हमें साधना करनी होती है, क्यों हमें अध्यात्म में आना होता है? क्योंकि वहाँ से ही जब आप जानोगे तभी आपका वो एक्सेप्टेंस आएगा, उस साधना के थ्रू। उस साधना के थ्रू क्या होगा? देखो, ये सारी जो एक्सेप्टेंस, सफरिंग, क्रिटिसिज्म, कंट्रोल, ये सब कहाँ हैं? ये सब हमारे मन के हैं, ये सब मन की चीज़ें हैं। तो मन के लेवल पे तो ये सब होने वाला है, साधना आपको क्या करती है, वो मन के बियॉन्ड ले जाती है। साधना में आप मन को ट्रांसेंड कर जाते हो, तो वो जो ट्रांसेंडेंस है वहाँ पर एक्सेप्टेंस आएगा, वहाँ पर आपकी सफरिंग समाप्त होगी। बस इसीलिए साधना करनी है। जब तक हमारा ये फिल्टर लगा हुआ है तब तक इस फिल्टर के अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो चलेंगी। जो आपने पूछा क्या इंडिफरेंट होना भी एक्सेप्टेंस है, तो वो अभी जो मुमुक्षु ने पूछा था उसमें ऑलरेडी ये आंसर हो चुका है, वही बात है। संगीता ने लिखा है क्रिटिसिज्म से हम कई बार पॉलिश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ क्रिटिसिज्म हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है क्योंकि हम नहीं, हमारा अहंकार बहुत दुख पाता है उस समय, हमारी ईगो बहुत हर्ट होती है, लेकिन कई बार क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है। और बहुत अच्छा होगा हम लोग भी सब सोचें कि कब है जो क्रिटिसिज्म मेरे लिए काम आया। उस समय मुझे बुरा लगा था जब किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन बाद में क्या उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया? क्या जब मैंने उस हिसाब से काम किया तो मुझे वो चीज़ हेल्प करी? और यहाँ पर ना मैं फिर से एक और चीज़ बोलूँगी कि क्रिटिसाइज़ भी आपको कौन कर रहा है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपको जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है उस पर विश्वास होता है, उस पर श्रद्धा होती है, जब आप उसको लुक अप टू करते हो और आपको पता है कि वो आपके भले के लिए ही करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा, आपको किसी भी तरह से आपको दुख देने के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके लिए भले के लिए कर रहा है, तब आप बुरा नहीं मानोगे। हो सकता है आप उस टाइम मुँह में मोमेंट्री आपको बुरा लगे, जैसे मैंने बोला कि जैसे हमें चोट भी लगती है शरीर पर, तो मोमेंट्री तो एकदम से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, हमें चोट लगती है तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे माइंड का भी क्रिटिसिज्म होते ही एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इमीडिएट हमें लगता है नहीं। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला कौन है हमारे, और जब आपके गुरु आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो तो मतलब सोचो कि लॉटरी लग गई, इससे बड़ी लॉटरी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके भले के लिए ही हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है, वो कभी आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं करता। आपके कोई जो आपका 100% भला चाह सकता है वो है आपका गुरु। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जब, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बताए, मैं तो पूछती रहती हूँ अपने गुरु को कि बताइए और क्या, कुछ भी जहाँ पे गलत लग रहा हो, कुछ भी हो तो बताओ मुझे। और ऐसे ही इसीलिए हम एक और बात करते हैं कि हमारी लाइफ में जो मेंटर्स होते हैं, एक तो हुए गुरु, चलो हम लोग तो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, वहाँ पर एक गुरु होना, इसीलिए एक मेंटर होना लाइफ में, ऐसा मेंटर जो आपको पता है आपका भला ही चाहेगा। जो भी लोग, इवन वर्ल्डली सेंस में मैं बोल रही हूँ, जो सक्सेसफुल होते हैं, वहाँ पर भी मेंटरशिप और कोचिंग ये बहुत काम करती है, क्योंकि वो आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली बता पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरा काम है, मैं कॉर्पोरेट्स में असेसर हूँ और कोच हूँ, तो मेरा काम यही है, जो बहुत बड़ी बड़ी पोजिशंस में हैं, जब उनको पता है कि कोई बाहर का पर्सन जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और फिर मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ, फिर मैं उनको बता सकती हूँ कि यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हैं, वो मेरा रोज़ का काम है बताना, और फिर वो उस चीज़ को सीरियसली भी लेते हैं, अच्छे से लेते हैं, बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि यही तो सुनना है हमें, यही तो जानना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और वो चीज़ काम करती है। अभी हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का तो काम है ना हमें बताना कि हमारी बीमारी क्या है। अगर वो बीमारी नहीं बताएगा, वो सोचेगा ये नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर तो वो डॉक्टर कैसा हुआ। पूजा इज सेइंग, व्हाट इफ वी फील हर्ट बट गेट ओवर इट सून, अदर्स क्रिटिसिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम आई इग्नोर। दैट्स वेरी गुड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, कि देर वुड बी एन इमिजिएट रिफ्लेक्स एक्शन, वो होता ही है, लेकिन बस अगर आपको वो वहीं पे ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। स्वाति सिंह, हेल्दी क्रिटिसिज्म, यस। मुमुक्षु ने लिखा है, अपने आत्मसम्मान पे बात आए तो मैं जवाब देती हूँ, लेकिन आलोचना में यदि कोई फीडबैक होता है तो मैं लेती हूँ और कृतज्ञता की भावना होती है, लेकिन साक्षी भाव में प्रेम उल्लास होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ये आपने जो पहले बोला कि आत्मसम्मान पे बात आए तो मैं जवाब देती हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर जा रही है, तो ज़रूर उसमें जवाब देने में कोई बुराई बिल्कुल नहीं है, और हाँ कोई अगर आपको फीडबैक दे रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो आपने लास्ट लाइन लिखी कि साक्षी भाव में प्रेम उल्लास होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, ये शायद आपका, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट कि आपको ये कुछ आपने अपने दिमाग में बिलीफ बना ली है कि साक्षी भाव होता है तो उसमें बड़ी खुशी होती है या जॉय होता है या प्रेम होता है। प्रेम का क्या मतलब है? शायद यहाँ पे आप कुछ पॉजिटिव की सोच रही हैं कि कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। साक्षी भाव इज़ टोटली न्यूट्रल, वहाँ पे ना कुछ पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कुछ एक्सपेक्ट करना, सोचना कि यहाँ कुछ पॉजिटिव होगा, तो फिर आपका साक्षी भाव के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, या मे बी मेरे समझने में जो आप लिख रही हैं, या तो मैं ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ आपका, लेकिन वो बस एक न्यूट्रल स्टेज है साक्षी भाव। मुमुक्षु ने लिखा है, मुझे किसी ने बोला कि बस तुम्हारा मन हट गया है, साक्षी भाव नहीं है, जबकि मैं तो न्यूट्रल फील करती हूँ। अब ये किसने बोला आपको, आप बताएंगे? किसने बोला, किसने? मैं आपको उनका नाम नहीं पूछ रही हूँ, मेरा मतलब है कि आपके गुरु ने बोला आपको ये बात, दोस्त ने। क्या वो दोस्त साक्षी भाव में है? क्या वो गुरु हैं? क्या आप उनको गुरु मानती हैं? और अगर आपके गुरु के सॉरी आपके दोस्त के बोलने से आपको लगा कि शायद मैं साक्षी भाव में नहीं हूँ या शायद ये ऐसा होना चाहिए, तो मतलब साक्षी भाव नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का बुद्धि से अवलोकन किया जा रहा है। मुमुक्षु ने लिखा है, नहीं पर उसे मेरे स्वभाव का पता है तो बोल रहा था कि बस मन उठ गया है चीज़ों से। देखो, वो ठीक है, आपके दोस्त कई बार हमारी फैमिली होती है, वो भी हमें जज करती है, उनको ऐसा लगता है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दूसरा क्या बोल रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरे के बोलने से आपके अंदर प्रश्न चिन्ह उठ गया कि मैं साक्षी भाव में हूँ कि नहीं हूँ, या साक्षी भाव में कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। तो मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि आपके गुरु हैं, आप तरुण जी के अंडर हैं मुमुक्षु, बहुत अच्छा। बस बाकियों को छोड़िए, आप अपने गुरु से पूछिए और किसी से नहीं पूछना है। ये जो भी आपके मन में सवाल उठा है, जो भी शंका आई है, अगर कोई डाउट आया है तो उनसे पूछिए जाके, वही आपको बिल्कुल सही उत्तर दे पाएंगे जो आपके लिए सही है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग तरुण जी से सवाल पूछने में थोड़ा घबराते हैं क्योंकि डांट पड़ती है। अरे, गुरु की डांट तो प्रसाद है, बिल्कुल डरना नहीं है, उनके तो डंडे पड़े तो और भी अच्छी बात है, सिर्फ डांट पड़े तो थोड़ा ही प्रसाद मिला, साथ में अगर वो बोलें कि चलो मैं तुम्हें अभी और बताता हूँ और आपको दो चार बातें भी सुना दें उसके बाद, डांटने के बाद, तो सोचना कि और एक्स्ट्रा प्रसाद मिल गया। गुरु की डांट से डरोगे तो क्या होगा, फिर कैसे साधना होगी। हाँ, अवाणी ने लिखा, गुरुदेव के डंडे ही प्रगति कराते हैं। पूजय सिंह, योर प्रसाद इज सो स्वीट, ओके यू वेट टू मीट मी नेक्स्ट टाइम, देन वील सी। और देख लेते हैं कौन से प्रश्न रह गए थे। 12वां प्रश्न, हाँ, नाम रूप का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले श्लोक में लिया था। ये जो प्रश्न आ रहा है ये उधर हमारे मांडुक्य उपनिषद से आ रहा है, क्योंकि हमने मांडुक्य उपनिषद में जो हमारा ये पूरा ओम पर है, ओम पर, और ओम को समझाने के लिए मैंने बात की थी नाम रूप के बारे में। तो देखिए, फिर से समझते हैं हम क्या जानना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है मांडुक्य उपनिषद पढ़ने में, कि हम उस सत्य तक पहुंचने के लिए, वो सत्य क्या है, और सत्य क्या है, वही परमात्मा, उसको हम परमात्मा भी बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। अब वो जो सत्य है वो अकथनीय है, मतलब इट कैन नॉट बी सेड, इट कैन नॉट बी सेड इन वर्ड्स। उसका बोलते हैं ना, अनादि है, अनंत है, उसकी ना बिगनिंग है ना एंड है, और वो एटर्नल है। मतलब अभी भी ये जो शब्द, ये भी जो बोला जा रहा है, ये देखा जाए तो बस कोशिश की जा रही है उसके बारे में बताने की। अब बाकी चीज़ों को छोड़ो, जब हमें किसी से प्रेम होता है, आपने देखा है जब हमें प्रेम हो जाता है किसी से, तो हम बता ही नहीं पाते, हम ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते कि मेरे पास शब्द ही नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि मुझे तुमसे कितना प्रेम है। हम जो अंदर फील करते हैं वो जब हम शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को, हम नहीं बांध पाते हैं, क्योंकि वो लिमिटेशन है। वो जो आपको एक इमोशन की फील हो रही है और वर्ड्स, वो नहीं, वहाँ पे कोई मैचिंग नहीं होती है। और यहाँ पे तो हम सत्य की बात कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी अब हम चल तो रहे हैं उसी को जानने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके, माना कि उस सत्य को कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या करें, क्या कहा जा सकता है, क्या हम कुछ कह सकते हैं उस सत्य के बारे में। तो फिर जो बात आई वो ये आई कि जो नाम और रूप हैं वो उसी सत्य को, उसी अकथनीय को कहने का तरीका है। उस अकथनीय को नाम और रूप से हम जान सकते हैं। कौन हम जान सकते हैं? यहाँ पर ये जो जीव है, हमने अभी भी बात की थी मन की, इंद्रियों की, तन्मात्राओं की, है ना। तो हमारा अगर हम देखेंगे, जो भी हमें नज़र आता है, हमारी सब इंद्रियों में दो इंद्रियाँ सबसे स्ट्रांग है। एक क्या है? हमारा विजुअल सेंस, और एक है ऑडिटरी, देखना और सुनना। और हम देखते हैं कि हर चीज़ का एक आकार होता है, रूप होता है, और हर चीज़ का नाम होता है। हर चीज़ में नाम और रूप है। और हम किसी भी चीज़ को जब एक नाम देते हैं, तो उस नाम में अगर कोई हमारा एक मीनिंग होता है, उस नाम को हम किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे परमात्मा को, जैसे हम, कोई बोलता है परमात्मा का नाम राम है, ठीक है, तो अगर हमारे मन में राम का, हमने, राम क्या है, हमने एक नाम दे दिया परमात्मा को, कृष्ण हमने एक नाम दे दिया, मोहम्मद हमने एक नाम दे दिया, क्राइस्ट हमने एक नाम दे दिया, अलग अलग नाम हमने दिए हैं। तो अगर मुझे राम नाम पसंद है, तो वो राम के नाम से मेरे अंदर उस सत्य का, मतलब उस राम से मैं उस सत्य की अनुभूति की कोशिश करती हूँ उस नाम से। और रूप, अब आप देखो हमने कितनी चीज़ों को रूप दिए हुए हैं, परमात्मा की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, तो वैसे देखा जाए तो सब कुछ ही, सारे नाम वही परमात्मा है और सारे रूप वही परमात्मा है, कुछ अलग है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए कुछ नाम और कुछ रूपों से हम उस सत्य को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं या कोशिश कर सकते हैं समझने की। तो मांडुक्य में क्या किया गया है, हमने जो उस शब्द को लिया है उस परमात्मा को समझने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, वो शब्द है ओम। और आप देखिए, ओम नाम भी है, ओम साउंड भी है, तो नाम हो गया, और रूप भी है। रूप कैसे हुआ? जो हम ओम का जो सिंबल बनाते हैं, हम सबको पता है ओम का सिंबल, वो क्या हो गया? वो उसका रूप हो गया, एक आकार है और नाम है। तो हर चीज़ को जो भी जाना जाता है, जो एक जीव किसी चीज़ को जान सकता है, वो नाम और रूप से। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मांडुक्य में बताया गया था कि उस नाम रूप के लिए हम मांडुक्य में किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ओम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ओम, उस नाम रूप को हम डिटेल में जानेंगे कि वो क्या है, क्या, और कैसे वही सब कुछ है, कैसे वो ओम ही परमात्मा है, कैसे वो ओम ही सत्य है, वो हम जानेंगे। आई होप इसमें कुछ और क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी नहीं है। मुमुक्षु इज सेइंग शी गिव्स ट्रुथ कैंडीज व्हाइल ही गिव्स ट्रुथ बॉम्ब्स, सो यू नो ही इज़ अ मच मच बेटर, मतलब देर इज़ नो कंपेरिजन। मुझे लगता है गुरु को ट्रुथ बॉम्ब्स ही देने चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ अपने गुरु से। कई बार ना बॉम्ब फोड़ने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कैंडीज से काम चलता नहीं है, बॉम्ब से बहुत जल्दी प्रगति होती है। आई होप मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हाँ, एक सिल्की ने पूछा था कि साक्षी भाव क्या होता है। तो सिल्की, आप नए हो इस सारी लैंग्वेज को लेके, ये जो यहाँ पर आध्यात्मिक भाषा है, तो साक्षी भाव होता है उस सत्य में आ जाना। जब आत्मज्ञान होता है, जब आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो आपके अंदर कुछ शिफ्ट होता है, कुछ है जो बदल जाता है। आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आप किस सेंटर से ऑपरेट करते हो, पहले आप किस सेंटर से ऑपरेट करते हो कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे मैं बोलूँगी मैं ये मुनि हूँ और मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं पुणे में रहती हूँ, मेरा पति है, मेरा बेटा है, ये मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, तो क्या हो रहा है, ये पूरा ये आइडेंटिफिकेशन इस सेंटर में है। लेकिन आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है, वही जो हमारा साधना का लक्ष्य है, कि उस सेंटर से जो सत्य का सेंटर है, वो भी हमारे ही अंदर है, हम सबके अंदर होता है, वो शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे पहुँच जाए। और जब वो सेंटर शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ से जो आप सब देख रहे हो, उसको बोला जाता है साक्षी भाव। और ज्ञान मार्ग में, हमने इस बार ज्ञान मार्ग की बात की थी, ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव की साधना भी होती है। जो साधना होती है वो यही होती है कि मैं बार बार ये ध्यान रखूं कि मैं ये नहीं हूँ, जो अनुभव हो रहा है वो नहीं हूँ, जो ये मन है, जो ये शरीर है वो नहीं हूँ, मैं उन सब को जानने वाला हूँ। तो ये साधना का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साक्षी भाव हो गया, यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं कि आप साक्षी भाव में आ जाएं। तो हम लेकिन उसको बोल देते हैं साक्षी भाव की साधना। आई होप कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आई थिंक मैंने सारे जो हमारे प्रश्न थे सब ले लिए हैं। इसमें भी किसी का कोई और कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगली बार सेशन में हम अगले सेशन से ही शुरू करेंगे। मैं अब क्वेश्चंस नहीं लूँगी, इस बार भी हमारे टाइम नहीं बचा था हमारे पास। अच्छा, कौन सा रह गया? ओह, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द मांडोक्य। करेक्ट करेक्ट, आई हैव नॉट इंक्लूडेड तंत्र मार्ग, दैट्स राइट, बिकॉज इट इज़ अ बिगनर्स गाइड ना, सो देर इज़ नो नीड फॉर तंत्र मार्ग टू बी देयर इन अ बिगनर्स गाइड, एज सिंपल एज दैट। एक साधिका का प्रश्न आया था कि वो पहले कुछ साधना करती रही हैं अपने आप, अभी कुछ समय से उन्होंने क्रिया योग की एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज अभी लेटली शुरू की हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ समय कुछ कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ कुंडली में, मतलब जो उनको मूलाधार चक्र पे एक सेंसेशन फील होता है, और फिर वो थोड़ी देर ऊपर उठता है और छाती तक जाकर, चेस्ट तक जाकर रुक जाता है। वो जो सेंसेशन है, ऐसे लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है और छाती तक पहुंचकर रुक जाता है, और फिर वो, उनको पूरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे वो अटका हुआ है, वो वहाँ पर कुछ अटक गया है, तो जिससे डिसकम्फर्ट होता है। तो उनका प्रश्न आया था कि क्या मुझे ये करते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो साधना करती हैं वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो अच्छा लगने के बाद उनके साथ ये होता है पूरा दिन, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और ये साधना भी किसी के निर्देश में नहीं की जा रही, जो उन्होंने अपने आप ही शुरू कर ली थी तो वो कर रही हैं। तो बिल्कुल आपको ये साधना, अगर आप मेरे पास आए हो और अब आप क्रिया योग का शुरू कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, उसको रोक दीजिए। देखिए क्या होता है, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे साधकों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, उनको लगता है, और आजकल हमारा सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हैं कि सबको लगता है कि अरे हम यहाँ पर देख लें और शुरू कर दें, और उसमें कई बार नुकसान हो जाते हैं। तो आपने कोई साधना शुरू कर दी है, अब पता ही नहीं वो आप क्या कर रहे हैं, उसमें आगे कैसे जाता है, क्योंकि अटकाव नहीं होना चाहिए ना। और अगर कोई गुरु होते जो बताते कि क्या है, वो बता पाते कि अगर आपका वहाँ पे जाके, चेस्ट पे जाके अटक जाता है, तो उसको कैसे ऊपर लेके जाना है या कैसे नीचे लेके जाना है, या ये सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती आपके साथ ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है आप इसको रोक दीजिए। अगर आप क्रिया में नहीं आ रहे होते तो आप जो मर्ज़ी करो, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। लेकिन अगर आप अब क्रिया शुरू कर दी है आपने ऑलरेडी एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस से, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल रोक दीजिए, मत करिए। देखो, इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकती हूँ, जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे जो फेशियल कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, कोई केमिकल्स होते हैं जो कई बार उनको पता होता है कि वो कितना केमिकल आपके लिए मिक्स करना है आपके स्किन पे लगाने के लिए। अब ये कुछ ऐसा है कि सपोज़ आपको नहीं पता, आपके पास ने सोचा चलो हम खुद ही कर लें, अपना ब्लीच ही कर लें, और आपने कोई केमिकल मिक्स कर दिया और आपने अपने एक गाल पे लगा लिया और वहाँ का पूरा स्किन कुछ जल गया, कुछ डिस्टर्ब हो गया। अब ये क्या होगा, किसकी गलती होगी, हमें पता ही नहीं है ना। देखो, एक इतनी छोटी चीज़ में कि हमने कोई इस तरह की ब्लीच डाल दी जिससे कि मेरा एक पूरा गाल जल जाए, और ये ऐसे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसे मैंने सुने हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ लोग खुद ही अपना करने बैठ जाते हैं ब्लीचिंग। आई एम श्योर बहुत सारी ब्लीचेज हैं जो अलाउड होती हैं, जो आप खुद कर सकते हो, पर किसी ने कुछ किया और पूरा फेस ही जल गया उनका। यहाँ तो फेस जला है, और यहाँ पर हम कोई साधना ऐसी कर रहे हैं और जिसमें आपको मूलाधार से वो फीलिंग हो रही है कुंडलिनी के ऊपर होने की, तो कुछ भी हो सकता है। और कौन जानेगा, किसी को समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ और आपको कैसे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। ये चीज़ें लाइटली लेने वाली नहीं हैं। कोई भी योग साधना जो है वो किसी की गाइडेंस में ही होनी चाहिए, तभी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, अब आपको ये नहीं करना है। और आपको अपनी, और बात वही है, आपने क्या बोला कि बहुत अच्छा लगता है साधना करते हुए, जब सुबह वो करते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो अब वो अच्छी फीलिंग आती है तो किसी को भी लगा होगा ना, मेरा गाल बहुत गोरे गोरे हो जाएंगे मैं ये ब्लीच लगा लूँ। अब वो गोरे गोरे होने की बजाय शायद कभी हो गए होंगे, एक बार ठीक लग गया होगा तो गोरे हो गए और अगली बार जल गए, है ना। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। मुझे ना कभी कभी लगता है सच में कि जैसे हमारे यहाँ भक्ति मार्ग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अगर देखा जाए। वो बात अलग है कि लोग भक्त होते नहीं हैं, पर फिर भी एक जो जिनको लगता है कि हाँ हम बस भगवान की पूजा अर्चना कर लें और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सही रहेंगे, उसमें एटलीस्ट आप कुछ नुकसान नहीं करोगे अपना। मुझे लगता है कि ज़्यादा जहाँ पर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, कि ठीक है आप बस भगवान को ही मान के पूजा कर लो तो ठीक हो जाता है, वही ठीक रहता है। जहाँ पर भी, वो बात अलग है कि कोई आप मार्ग पर चल नहीं रहे हो, बस आपको लग रहा है, आपको ये विश्वास है, आपको तसल्ली है कि मैंने भगवान का इतना सब कर दिया, बस आपकी तसल्ली के लिए उतना बहुत है। क्योंकि जहाँ पर वो आपकी तसल्ली समाप्त हो जाएगी, जहाँ आपको लगेगा नहीं इसके आगे कुछ है, तब तो मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो भक्ति मार्ग सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल मार्ग भक्ति मार्ग है। पूरी तरह से अपना समर्पण कर देना और सिर्फ उस परमात्मा को ही चाहना और कुछ भी नहीं, इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, फिर से मन के कारण, क्योंकि ये मन ही बीच में अड़ जाता है। इसलिए चलिए, आज के प्रश्न समाप्त हो गए हैं, लगता है और भी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी साधना करते रहिए, और जो भी गीता सेशन के हैं, हम इस संडे को नया अध्याय नहीं शुरू करेंगे, हम 14वें अध्याय के ही प्रश्न लेंगे, टेस्ट लेंगे। चलिए, सबका आने के लिए धन्यवाद और नमस्ते।